बढ़े, राधा गिरधारी की सेवा में निष्ठा बढ़े, प्रेम प्राप्त हो और आप सभी के आशीर्वाद से दास भी प्रभुपाद और गुरु गौरांग सेवा में लगा रहे, बस एकमात्र यही आशय से ही साहस किया जाना और कोई हेतु नहीं। जिनकी नंदन के भाव को याद करूं, तथापि मुकेर भाग्य मने रघुलास दोष शमी मोह में करुण दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महानुभाव चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 12वें अध्याय में पहले श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मानो हम सभी भक्तों को निवेदन करते हैं, 3:12:1 कविराज जी के उस पवित्र शब्दों को कृपा करके आप भी सुनिए और साथ में बोलिए। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम् दीयताम दीयताम मुदाम् चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्त्या चैतन्य चरितामृतम्। कविराज जी कह रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, कस्तूरी मंजरी है। राधा कृष्ण ललिता विशाखा के अनुगत्य में जो जो पद है मंजरी, और उनके ये निवेदन है किसके चरणों में? भक्तों के चरणों में। हे भक्तों, श्रूयताम श्रूयताम सुनिए सुनिए। क्या सुनिए? चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय चरित्र को सुनिए। तो फिर होगा प्रश्न कि संडे संडे सुने और पूर्णिमा में सुने? और क्या कहा गया? श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। नित्यम मतलब हमेशा, ऑलवेज, सदैव। जैसे नित्यम भागवत, नित्य सुनिए। फिर वो कहते हैं जो भी आपने सुना है परंपरा से आचार्यों से, गीयताम गीयताम मुदा श्रवण करिए, फिर क्या करिए? कीर्तन। उस चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को गाइए। लेकिन गाने के लिए एक एक विशेषण दिया, मुदा मतलब आनंद से गाइए। कभी कभी बहुत लोग कीर्तन करते मरे हुए की तरह, कोई उत्साह नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई सजा दी गई है। मुदा देखिए, श्रवण और कीर्तन नवधा भक्ति के प्रथम अंग है, लेकिन उसमें प्रमोद होना चाहिए, प्रमाद नहीं। प्रमाद मतलब आलस से और निरुत्साहित होकर बिना मन भाव के करना, फॉर्मेलिटी के लिए बस, आदेश है करना है मंदिर में है ओके, ऐसे नहीं। मुदा प्रमोद से भजन होना चाहिए। और फिर जो आपने सुना जो गाया उसका क्या करिए? चिंतताम चिंतताम भक्त्या इसका चिंतन करिए। श्री चैतन्य चरितामृतम्। मैं आशा करता हूं कि इस कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को हमने मनाया और राधा अष्टमी महोत्सव आ रहा है, और जिसका चरित्र हम सुनने जा रहे हो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण एक है। मानो जन्माष्टमी से राधा अष्टमी को जोड़ने के लिए बस ये चैतन्य चरित्र हो रहा है, क्योंकि उत्सव में गैप नहीं होना चाहिए। नंद उत्सव रूपा कह चो तुरंत ये उत्सव, और जैसे ही समाप्त होगा हमारे राधा गिरधारी का ब्रह्म उत्सव भी। श्री प्रभुपाद की कृपा से बस भक्तों को रोज उत्सव, आनंद ही आनंद। नाचो गाओ महाप्रसादे गोविंद। लेकिन स्वल्प पुण्य व्रतम राजन, लेकिन जिसका पुण्य स्वल्प है उसमें इसको विश्वास भी नहीं होता और आनंद भी नहीं होता। भक्तों, कभी कभी हम लोग भगवान के गुणों को गाते हैं, प्रभुपाद के आदेश निर्देश में प्रचार करते हैं, और जो भी भक्त सुनने बैठता है श्रोता, कृष्णदास कविराज महानुभाव जो चैतन्य चरित्र सुनता है उन श्रोता के विषय में क्या भाव रखते हैं ये भी सुन लीजिए। कविराज जी कहते हैं चैतन्य चरित्र यही जन सुने। चैतन्य चरितामृत को जो भी व्यक्ति सुनता है, चैतन्य चरितामृत यही जन सुने, तार चरण धोया कोई करु पाने। देखिए कितना ऊंचा भाव है श्रोताओं के प्रति कि जो भी व्यक्ति भगवान के कृष्ण की कीर्तन कथा सेवा करता है उनके चरणों का धोवन करके मैं क्या करूं पान करूं। पर हम लोग कभी कभी क्या समझते हैं, बस मैं ही गुरु काउंसिलर या आप सब सुनो, लेकिन जो सुनता है उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कथा श्रवण करने की ये लालसा है ना, कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। श्रीमद् भागवत के अनुसार जितना धर्म अनुष्ठान वर्णन है ना, इसका सार बताया गया वासुदेव तथा रुचि। और जो वैष्णव इस भाव से सुनने आया है उनके प्रति कितना आदर होना चाहिए, ये इस महानुभाव के चरित्र से पता चलता है। बोले सबके चरणों को धोकर मुझे मेरा मन हो रहा है कि इनको पानी पी लो, और हमारा मन होता है इन सबको धो डालो, बस मैं ही गुरु है सबको शुद्ध कर दो। और इतना ही नहीं आगे कहते हैं श्रोतार पद रेणु करो मस्तक भूषण। चैतन्य चरितामृत के वैष्णव श्रोताओं की जो चरण रज है ना वो कहां लगाओ, मेरे मस्तक का आभूषण बनाओ। तुम्हारे अमृत पीले सफल है श्राव। अगर आप लोग कृपा करके चैतन्य चरितामृत को पिएंगे ना, तो मैंने जो ये लिखने का नित्यानंद प्रभु के आदेश से वैष्णव गुरु कृपा से जो ये परिश्रम किया ना वो सफल हो जाए। अगर आप लोग कृपा करके इसको सुनेंगे तो मेरा परिश्रम सफल हो जाए। देखिए प्रारंभ से ही कितनी सुंदर शिक्षा है, ये ब्रह्म सत्र है। हम जिसका संवाद करने जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद, और कोई श्रोता नहीं वहां पर, एक ही वक्ता एक ही श्रोता। श्रीमद् भागवत के टीकाओं पर हम विचार थे तो जहां पर एक समान स्तर के श्रोता और वक्ता हो उसे ब्रह्म सत्र कहते हैं। वक्ता का जो स्तर होता है बुद्धि का शास्त्र अध्ययन का, श्रोता का भी समान वही स्तर होता है, उस दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसको क्या कहते हैं ब्रह्म सत्र। ये जो हम चालू करें ना ब्रह्म उत्सव वास्तव में आज से ही चालू हो गया, क्योंकि ब्रह्म के बारे में पर ब्रह्म के बारे में चर्चा चालू हो गई। उत्सव के पहले क्या होता है, चर्चा ही तो चालू होती है। हम वैष्णव का दो ही काम है, भगवत अर्चा और भगवत चर्चा। समझ में आ रहा है मेरा हिंदी, भगवान की अर्चा करना और दूसरा क्या करना, भगवान की चर्चा। कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च, गीता के अनुसार नित्य युक्ता उपासते न उपजौता। और कोई काम नहीं, जब श्रोता और वक्ता समान स्तर के हो तब कृष्ण रस बरसता है। रामानंद राय को भी कृष्ण और चर्चा करना का प्रेम, और गौरांग तो इसीलिए आए गोदावरी तक। कभी कभी क्या होता है कि वक्ता जो होता है वो कृष्णार्थी या कृष्ण भक्ति प्रेमार्थी नहीं होता, वो धनार्थी पूजार्थी पदार्थी होता है। बस यत्किंचित कभी बाहर हम देखते हैं बहुत सारे आयोजन होते हैं हरिचर्चा कथा समारोह, लेकिन उसमें श्रोता अगर वक्ता कहीं शुद्ध मिल जाए थोड़ा बहुत, कलयुग का शिकार न हुआ हो ऐसा दुर्लभ है, लेकिन जब किंचित मिल जाए तब श्रोता ऐसे नहीं होते। यजमान कराने वाला नामार्थी होता है कि भाई गांव वाले सुने कि हमने भी किया, पेपर में भी आ जाए और भी लग जाए, तो वहां फिर रसाभास होता है, एक मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन शुद्धता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो शास्त्रों का सार निचोड़ कृष्ण प्रेम भक्ति सेवा है उसको स्थापित किए, स्थापितम येन भूतले, वो चाहते थे कि इस्कॉन के भक्तों को चाहिए कि समाज को वास्तविक भागवत दे, भगवत गीता एज इट इज, जिसमें इस तरह का दुर्गंध न हो, पूजा मान प्रतिष्ठा, जिसमें शुद्ध सेवा भाव हो। इसलिए बोलने वाला भी सेवा करता है, उसका भाव होता है कि वाणी को शुद्ध करे और वैष्णव चरण में कुछ कृपा मिल जाए। ये कविराज जी का ये मूड है, ये भाव है। और जहां तक चैतन्य चरितामृत की कथा लीला का प्रश्न है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, यद्यपि शेषदेव अनंत श्री मुखे गाये न चैतन्य यश अंत नहीं देखे। बंगला भाषा ऐसा है कि कोई गुजराती जानता हो, हिंदी जानता हो, मराठी जानता हो, वो समझ लेगा। इसकी व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत नहीं, मारवाड़ी में समझ लेगा भले कंजूस हो। चैतन्य महाप्रभु के यश का समुद्र इतना विशाल है कि शेष देव भी इसको गाए ना, शेष देव को कितने मुखे जानते, सहस्त्र, अनंत मुख, अनंत नाम ही है उनका। और कृष्ण का स्वांश है, हम लोग विभिन्न अंश है, फिर भी वो पूरा नहीं कर सकते। गुणाम अनंतम अनंत माहु, भागवत जी में कृष्ण को अनंत इसीलिए कहते हैं कि उसके गुण अनंत है। यद्यपि शेष देव अनंत श्री मुखे गाये न चैतन्य यश अंत नहीं देखे। शिव जी बैठे गए, ब्रह्मा जी बैठे गए, नारद जी बैठे गए और सबके बीच में संगादिक मुनि बैठे थे और अनंत शेष गुण गा रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी के। अब हुआ क्या, एक दिन, दो दिन, दस दिन, एक साल, दो साल, दस साल, एक युग, दो युग, हजारों युग मिल के अंति भी हो रहा है, तब अनंत शेष को थोड़ी लज्जा आई। कभी कभी होता है ना, कोई काम आपको सौंपा जाए और वो आप टाइम से और सही तरीके से पूरा ना कर पाओ तो सज्जन व्यक्ति होगा उसको शर्म आता है, नाकाम नहीं होता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सज्जन होगा उसको थोड़ा हिया, संस्कृत में हिरिया कहते हैं, लाज को, शर्म को हिया कहते हैं। भागवत जी ने भी आया है, सहस्त्राक्ष हिरिया सिद्धि तलम का, कृष्ण के गुण गाते हुए पूरा नहीं कर पाए इसलिए अनंत शिव शर्म के मारे पाताल में घुस गए, वहां से बाहर नहीं आते। कोई लोग आपको पूछे ना कि अनंत शेष पाताल में क्यों रहते हैं, इसका कारण उत्तर भागवत जी ने, एक तो हम सबको टिकाने के लिए है क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर है, इधर है वो, लेकिन भागवत में इसका रसवी कारण चक्रधर ठाकुर देते हैं कि शेष जी शर्म के मारे कृष्ण कीर्तन पूरा नहीं कर पाए इसलिए कहां चले गए, शीतल पृथ्वी के तल में, नीचे पाताल में गतः। इसी बात को वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, भागवती चली जाए सिंधु परिवारे यशेर सिंधु कुल न देखे अधिकाधिक बाड़े। चैतन्य महाप्रभु के यश सिंधु का किनारा, कुल मतलब नहीं, तट नहीं मिला, काली निरल कुले के लिए कदम निरल, कुल मतलब तट, कालिंदी के तट पर कदम के नीचे केली करे, केली मतलब खेल क्रीड़ा, तो यश सिंधु कुल ना देखे, चैतन्य महाप्रभु के यश समुद्र का किनारा नहीं मिला। और इसलिए और जब जितना बोलते अधिक अधिक बाढ़, इसलिए शेष जी चले गए नीचे पाताल में, बोले यहां रहने लायक है नहीं, किस तरह मुखड़ा दिखा हो तुम्हारे भक्तों, कलयुग चल रहा है और कलयुग में बुद्धिमान उसे कहते हैं कि वो सार ग्रहण करे, सार एसेंस कंक्लूजन। जैसे भागवत में एक श्लोक है दत्तात्रेय अवधूत, जो अवधूत है जिसका यदु महाराज के साथ संवाद हुआ 11-8-10, आपकी जानकारी के लिए 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक, जिसमें 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं अणुश्च महदप्यश्च शास्त्रेय कुशलो नरा सर्वत्र सार मदधा पुष्पेभ्य दिवश पद। एक छोटा फूल हो पुष्प या बड़ा पुष्प हो, जो षट पद जिसको छह पांव है ऐसा भ्रमर हनी भी मधुर भ्रमरा, चाहे छोटा पुष्प हो या बड़ा उसको वो मतलब नहीं है, उस पुष्प का जो सार रस है ना पराग वो इसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जो कुशल नर है बुद्धिमान है वो कौन सा शास्त्र बड़ा शास्त्र है कि छोटा वेद है कि पुराण उसे मतलब नहीं, उसका सार पकड़ लेता है। समझ जाती है बात। एक श्लोक में कहा गया कि अनंत पारं किल शब्द शास्त्रम, शास्त्र भी अनंत है भाई, एक जंगल है अरण्य है वेदों का भी वेदारण्यम, अनंत पारं किल शब्द शास्त्रम अल्पश्च आयु बहवश्च विघ्ना। और हमारी आयु कितनी है अल्प, और विघ्न पदम पदम विपदा, इसलिए क्या करना चाहिए सारं ततो ग्राह्य अपास्य फल्गु हंसे शिर इवांगु मध्या। इसलिए सार को पकड़ लीजिए, जैसे हंस होता है वो शीर दूध को पकड़ लेता है अंबु पानी को छोड़ देता है। इसलिए सर्व वेद इतिहास नाम सारम सारम शब्द श्रीमद भागवत वेद इतिहास का सार जिसको सुखदेव ने पकड़ा, और उस सुखदेव के सामने गंगा तट पर राजा परीक्षित बैठे हैं, तो परीक्षित भी श्रीमद भागवत के 1:18-7 परीक्षित जी गंगा तट पर सुखदेव के सामने बैठे और इस कथा को नैमिषारण्य में ऋषि मुनि सुत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, तो ऋषि मुनियों ने पूछा कि प्रभु आपने बताया कि राजा परीक्षित में इतना पावर था कि वो कलयुग को मार सकता था, बोले हाँ, तो फिर मारा क्यों नहीं, शरण में आया तो माफ कर दिया, मार देना चाहिए कलयुग नहीं होता टेंशन ही नहीं होता सब लोग सुखी होते, दया दान धर्म साधना सब भस्म हो गई कलयुग के कारण, कलिना धर्म मित्रेण साधनम भस्मतागता कलिदावा न लेना, तो मार ही देते काम ही नहीं बन जाता। इसका उत्तर बलराम जी की कृपा पात्र श्री सुत गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं नानुदेष्टि कली सम्राट सारंग इव सारभो कुशलान्यासि सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि। सारग्राही थे क्या होता है सारंग कहते हैं, या सारम सारम गाए सार सार गीत गाए उस भक्तों को भी सारंग कहते हैं, सारंग गाना पदम लोग। श्रीमद वीर राघव आचार्य श्री संप्रदाय रामानुज के एक महान तत्व के विद्वान हुए जिन्हें श्रीमद भागवत का बड़ा चिंतन किया है और इसकी टीका में लिखते हैं कि राजा परीक्षित सार ग्रहण करने वाला था। कलयुग का सार है कीर्तन, कलयुग का सार है कृष्ण कथा, वो उन्होंने पकड़ लिया। कलयुग को मारा नहीं, जैसे भौरा सारं को यथा कमलगत सारं गृहणाति न तद नाशयति। कमल पर कोई भौरा बैठे तो उसका मधु, उसका हनी चूस लेता है, वो पुष्प को क्षति नहीं पहुंचाता, राइट। जो भौरा कमल पर बैठा है, गुलाब पर या चमेली पर, चंपा, किसी भी पुष्प पर, तो उसका रस, उसका हनी वो चूस लेता है, लेकिन पुष्प को वो क्षति पहुंचाता है, काटता है, मारता है नहीं। ऐसे ही जो अहिंसक साधु है और सार ग्राही है, उसने कलयुग का सार तथा कलिगत सार गृहणाति न तद जघानी इति अर्थ विराटम। महाराज परीक्षित ने भी कलयुग का सार ग्रहण कर लिया, कलयुग को मारा, और मारा नहीं उल्टा क्या हाथ पर ऐसे ही तोड़ डाला, कलयुग में से कली का दुर्गुण ही निकाल दिया, एक तरीके से मार ही दिया। सार ले लिया ना, जैसे मनुष्य होता है उसको आप हाथ पैर से मारो, एक मारना होता है, दूसरा उसका सारा तिजोरी खाली कर, ये भी क्या हुआ, मरना ही हुआ ना, बोले मार डाला है, क्या कंगाल कर दिया। ये वो लोग आज के मनुष्य चाहते हैं ना कि दो दो लकड़ी मार लो लेकिन पैसा मत लो, राइट। लेकिन मार्केट वाले मार ही देते हैं, तो मारना ही हुआ ना, कलियों को एक तरीके से उसका सार ही निकाल दिया। इसी तरह सार जो है ना, कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण कथा सार है, लेकिन वही कृष्ण जब राधा रानी का हृदय लेकर गौर अवतार लिया, तब हमारे आचार्य ने गाया, अवतार सार गोरा अवतार केने न भजी ततार करी मेरे वास गेले नाम व्यास। कितनी कितनी सुंदर बात लिखी अपन कर्म फिरे। अरे तुम नदी के गंगा के तट पर रह रहे हो फिर भी प्यासे मर गए। अवतारों का सार गोरा होता है और उसका भजन नहीं किया। नरोत्तम ठाकुर लिखते हैं, गौरांग गुणे ते झुरे, जो चैतन्य महाप्रभु के गुणों में झूमेगा, मतलब भाव से चाव से सुनेगा, नित्य लीला तारे फुरे। भगवान राधा कृष्ण का वृंदावन का जो निकुंज का नित्य लीला है ना, उसके हृदय में स्फुरित होगा। से ही जाने भक्ति रस सार, से ही जाने भक्ति रस सार। तो भक्ति के रस का जो सार है, माधुर्य है, उसको वही व्यक्ति जानेगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में रमण करेगा। विदाय गौर सिंधनाथ प्रेमानंदे। कोई कहेंगे प्रभु जी हमको बंगला नहीं आता, चैतन्य महाप्रभु की लीला तो बड़ी ऊंची है, हमने कभी सुना नहीं। बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, भाषा का या अपने स्तर का या स्थान का दोष निकाल सकते हैं, ये समय या फिर ये स्थान अनुकूल नहीं है गौर लीला के लिए, हम बहुत सारी बातें बना सकते हैं। लेकिन जिस गौर गुण गाथा को राधा कुंड के तट पर कविराज महानुभाव ने गाया है, वे कविराज खुद क्या कहते हैं इसको सुनिए ना भाई। लोग तो अपनी बुद्धि अपने स्तर से सबको झाड़ते हैं, तुम्हारा स्तर नहीं तो तुम जाओ पानी पूरी बिल्कुल खाओ भाई, तुम्हारी बुद्धि से सबको मत मापो, या फिर तुम्हारे जैसा ही सबको मत रहने दो, ये उसको कहा जा सकता है। कविराज कहते हैं कोई टेंशन नहीं, आपको भाषा ना आए, लीला समझ में ना आए, उसके अंदर तत्व सिद्धांत समझ में ना आए तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चैतन्य अवतार महावदान में अवतार है। अपराध किस चिड़िया का नाम है उसको पता ही नहीं। गौर नाम लेने से अपराध भी नहीं होता, कृष्ण नाम में तो बहुत कुछ बातें आ जाती है। अब ऐसे अवतार की कथा के विषय में आप क्या बोल रहे हैं बिना सोचे समझे। भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य में लिखते हैं कि भागवत को पढ़ा सुना और टीका भी लिखी, लेकिन वास्तविक भागवत कम समझा मैं जब मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा। और आप क्या बोल रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। कविराज जी कहते हैं बुझे के हो बुझे नहे, कोई व्यक्ति चैतन्य चरितामृत समझे या ना समझे, सुनीते सुनीते से हो, फिर भी अगर वो सुनेगा जेबाना ही बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, यद्भूत चैतन्य चरित। चैतन्य चरित इतना अमृतमय है, रसमय है, कोई व्यक्ति समझे या ना समझे सिर्फ सुने बस क्या लाभ होगा। तीन लाभ होगा कविराज कहते हैं। पहला लाभ कृष्णे उपजीवे प्रीति जानी वे वैसे वरीति, सुनी ने नहाया पड़ी। तीन लाभ होगा कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रकट होगा, कृष्ण उपजीते हित प्रीति जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम वो ये सुनने से होगा। दूसरा जानी के रस से रीति, ये जो माधुर्य रस है ना वात्सल्य माधुर्य कोई भी रस, और उसकी क्या परिपाटी है, उसकी क्या रीति विधि है, कैसे उसको पाया जाता है, उस पर क्या सुख है, इसको जानेगा। और सुन लेना भयो बड़ हित, उसका परम मंगल परम कल्याण परम हित होगा, मतलब सारे पापों से वो मुक्त हो जाएगा और परम पवित्र हो जाएगा। ये नारद भक्ति सूत्र है ना इस पर सार्थक होता है, यम लब्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। किम लब्वा, क्या प्राप्त करके मनुष्य तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा, ये जो भगवत गीता में ठाकुर जी ने संदेश दिया यम लब्वा चातरं लाभं मन्येना अधिकं तत, भगवत गीता 8:6 दुखे ना आप विचार लेते गुरु, उसको दुख क्या है पता भी नहीं चलेगा। जिसको दुख दोषानुदर्शनम कहा, जिस ब्रह्मांड को या जिस जगत को, उस जगत में रहते हुए अगर वो साधु संघ में कृष्ण प्रेमी के संघ में वो चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेगा तो आनंद समुद्र निमग्न मग्न गजेंद्र जी कहते हैं। चरितम सुमंगलम, चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के उसके प्रेमी भक्तों के चरित्र इतने महामंगलकारी है कि इसका श्रवणकारी श्रोता जो है वो आनंद समुद्र में विहार करेगा। दुख क्या है उसे पता भी नहीं रहे, लेकिन सुने तब ना। चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, 48 वर्ष तक लीला किए, 24 वर्ष में संन्यास लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम में गए। बोलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम अभी। और उस जगन्नाथपुरी धाम में चैतन्य महाप्रभु चैत्र और जब वैशाख महीना आया तो सार्वभौम भट्टाचार्य और नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जैसे ऊंचे भक्तों के बीच में उन्होंने निवेदन किया कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जाना चाहता हूं। मध्य लीला का 7वां अध्याय बड़ी सुंदर संवाद है। पूछा नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु वहां क्यों जाना चाहते दक्षिण भारत। विश्व रूपा सिद्धि पाइला जाने न सका, बोले मेरा बड़ा भाई विश्वरूप है ना वो संन्यास लेकर उस तरफ गया है तो मुझे भी वहां जाना है, उसको खोजना है। अरे सब जानते थे कि वो परम गति को प्राप्त हो गए, तो महाप्रभु आप नहीं जानते हो जो रहा ही नहीं प्राप्त ही हो गए परम गति, उसको क्या ढूंढना, तो फिर आप जाना तो चाहते हैं कारण क्या है। तो कहते हैं महाप्रभु के विषय में विश्वदास कविराज रहस्य खोलते हैं। दक्षिण देशे उद्धारित करे नहीं छोर। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम गौर करेगा प्रचार, युग धर्म प्रचार के लिए और बद्ध जीवों का पापी तापी यंत्र छिलों का उद्धार करना था, इसलिए उसने दक्षिण भारत की यात्रा का बहाना विश्व रूप को ढूंढने जाने का बनाया। और जई क्रा में जाई तार करे उपदेश, यही मतलब वैष्णव है लो सकल दक्षिण देश। और जिस गांव में जाते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके उनका कीर्तन सुन के लाखों लाखों लोग हरि बोल कहकर जोड़ने लगते, प्रेमी बन जाते। कविराज जी लिखते हैं कि वैष्णव है लो सकल दक्षिण देश। और आज भी आप भारत में देखिए वैष्णव, और पद्म पुराण में भी हम पढ़ते हैं द्रविण उत्पन्न कर्नाटक वृद्धि जता, भक्ति जो है वो दक्षिण में है। ये जितना भी पाखंड है ना ये गुजरात और यूपी में चल रहा है, उधर कोई नहीं चलता। दक्षिण में आप देखिए वहां के बड़े बड़े राजा हुए या जितने भी आचार्य हुए हमारे भी मध्व या सिंह सब कहां हुए, आप उसका जन्म स्थान डिसाइड करिए पता चलेगा दक्षिण। और महाप्रभु चैतन्य जब वहां गए तब तो सबको प्रेमी बना दिए कीर्तन से दर्शन से कथा से। और करते करते कुर्म क्षेत्र में आए, कुर्म ब्राह्मण का कल्याण किए और कुल्य कुर्म ब्राह्मण के घर से जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके चले गए, आगे बढ़ते हुए यात्रा में उसी समय एक भक्त आया वासुदेव देव। बोले हमने रात में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु आपके घर रुके। बोले रुके है ना, रुके थे। बोले चले गए, चले गए। रोने लगा वासुदेव विप्र, रोने लगा। कविराज जी कहते हैं कि उसके उसको एक कुष्ठ रोग हो गया था कि उसके हाथ में कीड़े पड़ गए, लेकिन इतने करुणावान थे वो कि जो कीड़ा नीचे गिर जाता था उसको उठा के रखते थे, भाई खाओ भाई आपका नाश्ता कब नहीं होना चाहिए, आपकी डिस्क यही रहनी चाहिए। कितने दया थे, जिस कीड़े उसके शरीर को खा रहे थे कुष्ठ रोग हो गया था, ऐसा वासुदेव विप्र नाम का ब्राह्मण इतना अंदर से कृपालु दयालु था कि उस कीड़े को भी मारना नहीं चाहता था, उसको झिला के उसको खिलाना चाहता। और हम भक्तों को देख के महाप्रसाद का क्या हाल करते समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन के मंदिर के भक्तों का कर्तव्य है कि कृष्ण को लगाया हुआ भोग महाप्रसाद ये संकीर्तन और ये कथा रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए हमेशा। इसलिए बोला गया स्वयं बनाते थे प्रभुपाद जी, और जो भी कीर्तन करना में आता था उसको खुदा महावैज्ञानिक के संप्रदाय के हैं हम भाई चैतन्य महाप्रभु, विचारना चाहिए इस पर। रोने लगा मेरा दुर्भाग्य कि मुझे दर्शन नहीं मिला, और इतना रो रो के भूमि पर आलोटने लगा वहां पर घूमने लगा। तब चैतन्य महाप्रभु जो कई किलोमीटर दूर चले गए थे वापस आ गए और उसके सामने प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु के दिव्य सुंदर दर्शन करके कृतार्थ हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने दोनों भुजाओं को खोल के उसको भर लिया। कविराज महान भाव कहते हैं प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरी केला। चैतन्य महाप्रभु के पवित्र श्री कलेवर का जैसे ही स्पर्श मिला वो जो कीड़ा वो जो दुर्गंध वो जो रोग था वो चला गया। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरी केला आनंद सहित अंग सुंदर है। और आनंद से वो सोने जैसा चमकने लगा उसका शरीर। इसीलिए लोचनदास ठाकुर ने गाया है पशु पाखी झूले पाषाण विदरे सुनिया गुण सुनिया गुण दखा। पशु पक्षी अरे पत्थर भी रोने लगता है झूमने लगता है चैतन्य महाप्रभु के गुणों को सुनकर। देखिए इसकी करुणा वासुदेव अमृत पद प्रभु नाम वैलव। कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम बदल गया, वासुदेव को भी अमृत पद दे दिया। और इस छोटी सी लीला को समाप्त करते हुए सातवें अध्याय का समापन करते हुए कविराज जी लिखते हैं, श्रद्धा करी यही लीला सुने जग अवश्य मिलते कारो चैतन्य चरण छोटी सी लीला को जो भी श्रद्धा से सुनेगा उसको क्या प्राप्त होगा, अच्छी आते मिले तार चैतन्य चरण। अच्छी रात समझते इमीडिएटली तुरंत करना क्या है, कुछ नहीं बस बैठ के सुनना है, लेकिन श्रद्धा से श्रद्धा करी जय लीला सुने जय जोन अच्छी राते मिले तार चैतन्य चरण। चैतन्य र लीला र अंत नहीं देखे महान देव मुखे सुनी ताई पर जो मैंने सुना वो बोला श्री रूप रघुनाथ पदे जय रजस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। और इस तरह मध्य लीला का ये महाअमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में श्रीपाद नित्यानंद प्रभु और षडगुरु स्वामी और वहां के वैष्णव वृंदावन के आचार्य की कृपा से प्रस्फुटित हो रहा है, वही कविराज महानुभाव वैष्णव जगत पर महाकरुणा करके आगे का आठवां अध्याय लिखने जा रहे हैं, जिसमें रामानंद राय के साथ महाप्रभु का मिलन होगा। और कविराज महानुभाव का एक विधि था कि जो भी चैतन्य लीला अध्याय में आने वाली है उस पत्र को लेकर उस लीला को लेकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एक श्लोक निवेदन करते थे प्रणाम का, वही श्लोक आपके सामने रखा गया है। आइए मध्य लीला के चैतन्य चरितामृत आठवां अध्याय जिसमें राय रामानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु का यह दिव्य संदेश उसमें प्रथम श्लोक से प्रवेश करें। श्लोक बोर्ड पर दिखाया जाएगा, उसको देखते हुए आप सभी पीछे बोलिए, संचाय राम विद्वत मेघे संचार्य रामा विद्वत मेघे स्वभक्ति सिद्धांत जयामृतानि स्वभक्ति सिद्धांत जयामृतानि गौराधिरेते यमुना विकीर्णे तज्ज्ञात्वरत्नालयतां प्रयाति संचार्य रामा विदभक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत जयामृतानि गौराधिरे प्रयाति तज्ज्ञात्वरत्नालयता प्रयाति इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा है जो मैं पढ़ता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषय समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की जिसकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदान था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु रूपी समुद्र के ऊपर रक्त रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। संचार्य रामा वितभक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी। देखिए भक्तों, महाविद्वत वैज्ञ कवि गुरु चूड़ामणि कविराज महानुभाव के द्वारा ये रचना की गई है। इन श्लोकों के शब्द में बड़ा मर्म है, बड़ा अर्थ है। श्री गौरांग को चरणाबिंदन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही गहरा श्लोक है। इसको आप समझ लेंगे तो पूरा अध्याय समझने में बड़ी सरलता होगी, बड़ी सुगमता होगी। इस श्लोक में रामा वीत में भक्त मेघे राम राय नाम के अभी मतलब नाम के राम राय नाम के भक्त मेघ, मेघ मतलब बादल, रामानंद राय को भक्त बादल कहा। क्या कहा? भक्ति का बादल। और गौरा भी श्लोक दिखाइए, गौरा भी, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु, अग्नि मतलब समुद्र, चैतन्य महाप्रभु को समुद्र कहा। आप समझ रहे, चैतन्य महाप्रभु को समुद्र कहा और रामानंद राय को बादल कहा। और फिर बताया कि स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी संचार्य, इस समुद्र ने अर्थात चैतन्य महाप्रभु रूपी महासागर ने अपने जल से जल को उस रामानंद राय रूपी भक्त बादल में डाला। जैसे बादल कैसे बनता है, समुद्र के जल का बाष्पीभवन होकर ही तो बादल बनता है, तो चैतन्य महाप्रभु ज्ञान के समुद्र है, रस के अर्णव है, रसार्णव है। और उन्होंने क्या किया, अपनी कृपा से स्वभक्ति, अपने शुद्ध भक्ति के रस का जो सिद्धांत है, जो अमृत है, मतलब ये जो जल है उसको अमृत का उपमा दिया गया। स्वभक्ति रूपी जो जल, ये भक्ति रूपी जल, भक्त रूपी बादल, और चैतन्य महाप्रभु क्या है, समुद्र। आप उपमा पहले समझिए फिर इस श्लोक में प्रवेश करें कि चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र ने अपने भक्ति रस रूपी अमृत जल को उस रामानंद राय रूपी बादल मेघ में संचय कर दिया। और एक अब क्या हो रहा, एक मतलब अब अमुना, यही रामानंद राय विदिन ने वो वापस डाल रहे, बादल पानी रखता है अपने पास, समय आता है जहां जरूरत होती वहां क्या करता है, बरसाता है। तो एते गौरा की ये तो हो गया, एते अमुना, तो वही रामानंद राय रूपी बादल, वही रामानंद राय रूपी बादल क्या कर रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु जो उसके पास प्राप्त किया था उस प्रेम भक्ति रस सिद्धांत को बरसा रहा है। किसके ऊपर, उसी के ऊपर, बादल समुद्र के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु अब क्या बन गए, तो अंतिम लाइन में लिखा है तज ज्ञात्वा, उसको प्राप्त करके, उसको जानकर, उस बादल अपना ही दिया हुआ जल, लेकिन जब बादल से प्राप्त किया पुनः तो क्या हो गए, तज ज्ञात्व रत्नानयतां प्रयाति, वो रत्नालय हो गए। रत्न मतलब ज्वेल, मणि, मोती, और सागर का एक पर्याय नाम है रत्नाकर या रत्नालय। प्रयाति मतलब बन गए, समझ में आया। चैतन्य महाप्रभु महासागर ने अपने जल को बादल में भरा और उस बादल ने पुनः उसको बरसाया उसी समुद्र, मतलब चैतन्य महाप्रभु पर। तो अब चैतन्य महाप्रभु इसको पाकर क्या बन गए, गौरांग रत्नालय समुद्र बन गए। अब ये हो गया अनुभव। आज विज्ञान के द्वारा पहले समझिए कि सूर्य के द्वारा जब बाष्पीभवन होता है तो समुद्र का जल बादल बनता है, लेकिन एक अंतर है, वो खारा होता है और बादल बनते तो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। अंतर है ना, जल वही है, क्वांटिटी में भी अंतर है और क्वालिटी में भी अंतर है। वहां थोड़ा है यहां ज्यादा है, वहां खारा है यहां मीठा। और भक्तों, जब
तब एक विशेषता होती है क्या, कुछ अमुक नक्षत्र के अनुसार जब वो पानी नीचे बरसे और उसमें रहने वाले शंख या शिपी के मुख में जाए तो वो जल क्या बन जाता है,
मोती बन जाता है।
फिर वो जल जल नहीं रहता, एक तो जल मीठा हो गया, दूसरा मीठा ही नहीं हुआ, क्या बन गया,
मोती बन गया।
लेकिन किसको पाकर, पात्र को पाकर, सब सब जल मोती नहीं बनता। या मुंबई में लोग पाव भाजी बनाते, उस तवे पर गिरता है तो स्वाहा हो जाता है, मोती नहीं बनता। सट करके डोसा बन जाता है, उड़ जाता है, बारिश में भी बनता है ना डोसा, तो वहां मोती बनेगा क्या, जल तो वही है, स्वाति नक्षत्र है, वही जल है, लेकिन उस तवे पर गिरने से मोती नहीं बनेगा, वो शिव के मुख में जाएगा तब मोती बनेगा। समझ रहे ना, ये तो ये विज्ञान है आज की वास्तविकता। ओके, अब देखिए रामानंद राय को यहां भक्त बादल का भक्तो, कई जगह शास्त्रों में विद्वानों के द्वारा वैष्णव भक्त को बादल की उपमा दी गई है। बादल मतलब पर्जन्य, जिसका जीवन दूसरों के लिए हो, परोपकारमयी करुणामयी स्वभाव हो, एक तो मीठा हो प्लस करुणामयी, प्राणाय कारुण्य घना। चक्रवर्ती ठाकुर गुरु की वंदना में प्रथम उपमा क्या देते हैं, घना घनत्वम, बादल की तरह गुरु के गुणों को गाते हो। यहां तक कि हमारे संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद भट्टाचार्य को भक्तमाल में प्रियादास जी ने बादल की उपमा की, माधवाचार्य मेघ भक्ति सर्वसुर करिया। प्रियादास कहते हैं कि मध्वाचार्य वह मेघ है जो उसर भूमि थी, उसर मतलब जहां पर कोई कोई फल फूल नहीं उगता, रेगिस्तान, उसको भी भक्ति रस से भर दिया। बादल तो राजस्थान में जाके भी वर्षा कर सकता है ना, इसलिए मानस में रामायण में आया है मेघ पुराण उदगी घन साधु। ये वेद पुराण समुद्र की तरह है लेकिन साधु वैष्णव बादल की तरह है, क्योंकि साधु में तो सब लिखा है लेकिन बादल मीठा कर लेता है, इसलिए सार सार क्या है वो साधु समझ के हमको सार देता है। इसलिए रामायण में बादल भक्त की उपमा बादल से वहां पर भी दी गई है, और हमारे वेदों में भी श्लोक आया है, स्निग्धता ध्वनि रखी गई न जगत सक्रे संवर्ष तो वंदे वारिद भवन तो परोपकारी व्रतम तव। इसका अर्थ होता है कि हे वारिद हम आपको प्रणाम करते हैं, हे बादल हम आपको प्रणाम करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका परोपकारी व्रत है। अब रामानंद राय को मेघ कहा, यहां पर भक्त को मेघ कहा जाता है, ये तो आप समझ गए। अब एक प्रश्न होगा इस श्लोक पर कि चैतन्य महाप्रभु को आपने ज्ञान का समुद्र बताया, महासागर दौरा की, और उसी से उसी चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को संचार किया, इसका भक्ति रस सिद्धांत। तो भाई जब व्यक्ति के पास होगा तभी तो दे सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को नारायण ने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कहो, नारायण के पास ज्ञान था तब ब्रह्मा को दिया ना, भले हृदय में दिया, किसी ने देखा नहीं ऐसे दिया। बादल भी पानी बादल बनाता है तो दिखता नहीं है, यहाँ पानी का लाइन जा रहा है पाइप, बादल में पाइप दिखता दिखता नहीं। नारायण आपने भी ब्रह्मा को ज्ञान दिया दिखा नहीं, ऐसे आपने भी रामानंद राय को दिया दिखा नहीं हम लोगों को, लेकिन दिया, कविराज जी कह रहे हैं और सत्य भी है। तो फिर ऐसा बाद में क्यों कह रहे हैं कि उस रामानंद राय से प्राप्त करके ये महासमुद्र बन गए, तो उधर पहले से समुद्र थे। चैतन्य महाप्रभु को कहा जा रहा है कि ज्ञान की विधि पे पहले और उसने रामानंद राय को दिया, और बाद में इसी श्लोक में कहा जा रहा है कि उस रामानंद राय से प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए, ज्ञान समुद्र बन गए। अरे भाई रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो पहले ही ज्ञान थे तो होगा कभी भी, और आप कह रहे कि उनसे प्राप्त करके महासागर बने, तो इसका अर्थ होगा कि इसके पहले अपूर्ण थे। अब समझ रहे बात को, कि वहां से रामानंद राय से बादल से भक्ति रस पाकर चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए, रत्नालय समुद्र बन गए, तो मतलब उसके पहले नहीं थे और थे भी निकले नहीं थे, समझ में कैसे। देखिए भक्तों,
बहुत सिद्धांत की बात है, थोड़ा कान खुला करना पड़ेगा। फिर दक्षिण यात्रा चालू होगी, क्योंकि यात्रा जो पुरुष कर रहा है और जिसके पास जाके बैठने वाला है, उन दोनों को तो पहले समझ ले। और ऐसा रहे सुनने मिलता है जो हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर चिंतन किया। देखो, पुस्तक से जो ज्ञान प्राप्त हो या किसी व्यक्ति से श्रवण करने से जो ज्ञान प्राप्त हो उसे जानकारी कहते हैं। किसी को पढ़ने से कुछ जानकारी प्राप्त हो या किसी व्यक्ति से सुनने से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जानकारी। इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, संस्कृत में क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान का उसे अनुभव या उपलब्धि नहीं, याद भी नहीं रहा, समझा भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जानकारी हुआ। लेकिन वही ज्ञान जो विज्ञान में आ जाए, अर्थात अनुलब्ध प्राप्त हो जाए, अनुभव हो जाए, तो उसे विज्ञान कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ज्ञानी थे, लेकिन रामानंद राय से प्राप्त करके भक्ति रस सिद्धांत को जब वापस आया तब वो विज्ञान में हो गया। ये अर्थ हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मेडिकल साइंस स्कूल में कॉलेज में सुना, शास्त्रों से पाया, पुस्तक से पढ़ा, लेकिन जब तक कोई ऑपरेशन नहीं करेगा वो डॉक्टर, तब तक अपूर्ण है। जान लिया, सुन भी लिया, लेकिन एक भी ऑपरेशन नहीं किया, उसके पास आए ऑपरेशन कराओगे? क्योंकि उसका थियोरिकल नॉलेज नहीं है, थियोरिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान है विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान शब्द गीता में आया, ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्मा मोक्ष से सुभाग। ज्ञान का अर्थ अनुभव से है, आत्म साक्षात्कार से है और परोक्ष ज्ञान से है। तो फिर एक प्रश्न होगा, अभी प्रश्न फिर चालू है कि जो श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में व्यास जी लिखते अर्थेषु अभिज्ञ स्वराज, जो सब जानते सर्वत्र और सर्वज्ञ है, और उस कृष्ण स्वयं गीता में कहते वेदा अनुसमतिकानि, मैं सब जानता हूं, और उसी कृष्ण का साक्षात स्वयं अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी है। और आप कह रहे हैं कि उस चैतन्य महाप्रभु में विज्ञान का अभाव है? पहले उत्तर के अनुसार तो यही हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ज्ञान थे, विज्ञान नहीं थे। लेकिन जो साक्षात श्री कृष्ण है, जो ब्रह्मा को ज्ञान दे सकते हैं नारायण स्वरूप में, और सर्वज्ञ है, और आप कैसे कह सकते हो कि उस चैतन्य महाप्रभु में विज्ञान? फिर सिद्धांत प्राप्त करके फिर रत्नमय हुए, उसके पहले नहीं थे, कैसे कह सकते हो? इसका उस प्रश्न का क्या समाधान? इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर है समझने लायक, जो आचार्य जो सही रूप में समझे। तो देखिए, पहली बात, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पूर्णज्ञ है, ओके, लेकिन फिर भी रस आस्वादन के लिए और लीला की पुष्टि के लिए उन्हीं की लीला शक्ति उसमें अपूर्णता का रूप लेकर प्रकट होती है। जैसे भगवान श्री राम भगवान है, ज्ञानी है, पूर्ण है, तो फिर सोने के मुख के पीछे क्यों भाग? उसको नहीं पता कि ब्रह्मा की 84 लाख योनि में स्वर्ण रूप नाम का आयु तक ही नहीं प्रभु के साथ हम परसों वापस से आ रहे थे, तो उसने पूछा प्रभु जी जर्सी गाय जो है वो 84 लाख जमीन है कि अलग से? क्योंकि पहले तो ये तो अभी भी प्रोडक्ट हुआ है और कुछ गाय की चर्चा हो रही थी, तो बोला है लेकिन प्रकट अभी हुआ है, कोई नया तो होता नहीं हो सकता, नई योनि पर मॉडिफाई किया गया। भाई गाय पशु की नक्षत्रीय पशु में है लेकिन ये जर्सी भी है क्या? ऐसे ही सोने का मुख तो है ही नहीं, भगवान है फिर भी क्यों ढूंढने चले गए? क्योंकि उनकी लीला शक्ति रस पुष्टि के लिए उन्हें अज्ञानता या अपूर्णता का अनुभव कराती है। या फिर वही राम सीता अन्वेषण यात्रा में पत्थर से पूछ रहा है, तुम देखी श्री राम एक नहीं थी? और जब मर्यादा सरकार राम की लीला भी हमें समझ में नहीं आती, तो ये केड़ी सरकार त्रिभुवन ललित की लीला कैसे समझोगे? अभी जो लीला आने वाली है दामोदर लीला, दामोदर
प्रतिमा पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया।
देखिए दामोदर लीला का दर्शन आप सबने किया है, दर्शन मतलब निदान भी किया है, दर्शन भी किया और सुना भी है भक्तों से बहुत बार पांडव से। लेकिन इसका ओवरव्यू इसका ये देखिए, पूर्णत्वे अपि स्तन्यताम चक्रवर्ती ठाकुर, जिसको वेद पूर्ण काम कहता है उसको दूध पीने की कामना हो गई विरोध, जो पूर्ण काम है वो क्या हो गया प्यासा हो गया, होना नहीं चाहिए। वेद कहता है कि कृष्ण पूर्ण काम है, पूर्ण कामत्व अति स्तन में काम है, जागते ही भागवत में लिखा है कि माता यशोदा का स्तन पीने की लालसा हुई। दूसरा आत्मरामत्व अति बुभुक्षया, जिसको आत्मा राम कहे, जिसका भजन करने वाला व्यक्ति आत्मस्वरूप को पा जाता है, जिसकी कथा सुनने वाला भूख प्यास से ऊपर उठ जाता है। परीक्षित न बाजते सुनमा पिबंध मुखाम भोजन, मेरी भूख प्यास कहां जिंदगी पता नहीं। और ऐसे स्वयं आत्मा राम भगवान को क्या लग गया, भूख लग गया, मतलब दूध माता चली गई तो भूख उसकी पूरी नहीं हुई, गुस्सा हो गया ना। अब गुस्सा पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते शुद्ध सत्व स्वरूप अपि कोपम, जिसको उपनिषद कहता है सत्वम विशुद्धम वसुदेव सप्तितम, जो वसुदेव सत्व में स्थित है उसको कोप आ गया। कोप रजोगुण का लक्षण है, क्रोधान बाह्य रूप से है ना, सब उल्टा देखो। अब सुनिए इसके आगे कहते हैं, स्वराज्य लक्ष्मी स्थितत्व अपि चोरिया, लक्ष्मी उसकी घरवाली है तुम चोरी कर रहे, उल्टा महाकालादि भय तत्व अपि मातृ भयात् पलायनम, यह विवेक स्वयं भयम शिव जिससे डरते, महाकाल यमराज जिसे कांपता है और वे भगवान यशोदा प्रियो लोक लाघव मानम परामित मृत्यंतृत्य गोप्या, यशोदा प्रियो लोक लाघव मानम जीवन में, कभी रोना नहीं पड़ेगा। हंसोगे
तुम्हें हंसाने के लिए मैं रो रहा
रो रहा है आगे लिखते हैं आनंद से अपनी दुख रोदनम और लास्ट में कहते हैं कि इतना ही नहीं हद तो कहां वहां वहां आकर हो जाती है सर्व व्यापक अपनी बंधनम जो असीम है अनंत है सब जगह व्याप्त है और उसको माता यशोदा ने बांध भक्ति पत्रम नमो देवदानोदर अनंत विष्णु सत्यवचन गायन बंधन सीता सर्वत्र कृष्ण भूषणम मधु भूषणम परम परम भूषण भूषणम इस तरह कृष्ण में सब भूषण भी आभूषण है उसमें कोई वस्तु अब इस सिद्धांत से हम क्या कहना चाहते हैं कि भगवान चैतन्य भी पूर्ण है सर्वज्ञ है लेकिन रस लीला के लिए रस आस्वादन के लिए अपूर्णता अज्ञानता को उसकी लीला शक्ति से वो स्वीकार करते जैसे राम ने किया कृष्ण ने किया देखो चैतन्य चरितामृत की यही विशेषता है क्योंकि इसको लिखने वाला वैष्णव कविराज महानुभाव रसिक है प्रेम पत्नी चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने कविराज जी के विषय में परिचय दिया सुनेंगे आप लोग नरोत्तम दास ठाकुर कविराज के विषय में क्या कहना चाहते जिस कविराज के वक्तव्य को हम सुनने बैठे वो कहते हैं कृष्ण दास कविराज रसिक भगत माज चैतन्य कृष्णदास कविराज रसिक भक्त है रसिक किसे कहते हैं भगवत रसिक रसिकन की बात है रसिक बिना कोई समझ सके ना अरे भक्ति रसानंद रूप गोस्वामी ने कहा सर रसिके भागवत कथा नाम आस्वादन करो लेकिन कैसे भक्तों के साथ रसिके बोले रसिक तो बहुत लोगों का नाम होता है लेकिन काम क्रोध से भरे होते हैं रज छाए रज पाइए रसिक की व्याख्या ब्रजभाषा में बड़ी मधुर की गई जब व्यक्ति रजोगुण को छोड़ता है काम क्रोध को वासना को तब ब्रज की रज को पाता है ये रस रज से मिलेगा क्योंकि रसराज वहां नाचता है इस रज में रज छाए मतलब रजोगुण को छोड़ोगे मतलब कामना क्रोध को छोड़ोगे तो रज पाइए तो कहां जाओगे रज मतलब वृंदावन की रज को आप पाओगे बताओ और रज छाड़े रज जाए और आपने वृंदावन की रज को छोड़ा तो रस चला जाएगा रज से रज को पिछान ले रस को रसिक कहा है इस रज की रज में जहां पर गोस्वामी ने जीवन लगा दिया हा राधे रज देव के जन्म थे ये नंद सुनो बुधा सर्वतो ब्रजपुरे खेलते महाभिगवतो वंदे रूप सनातनो रघुजी को श्री जी जो कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते हैं शुद्धि से देहात्म बुद्धि से मुक्त रजस तमस काम क्रोध आदि त्रिगुणाधि पुरुष जिसका जीवन केवल कृष्ण लीला स्मरण चिंतन है और सबके प्रति प्रेम करुणा से भरे हैं उसको रसिक कहते हैं इन शॉर्ट बहुत व्याख्या हो सकती है इनकी भी लेकिन कविराज जी को किस कोटि में रखा नरोत्तम दास ठाकुर ने कृष्ण दास कविराज रसिक भगत माज और उसने चैतन्य चरित दिखा ये हो गई न चैतन्य और एक बात ये भी सुन लो भक्तों साधु वो है रसिक वो है जिसको दूसरा रसिक या साधु साधु कहे वो खुद अपने को कहता फिर ऐसा नहीं चलेगा जैसे भरत जी गए त्रिवेणी के तट पर भरतराज खड़े होकर गए तात भरत तुम सब राम शुक्र और भरद्वाज सभा में कहकर तुम सब प्रकार से साधु साधव साधु भूषणा। मैं ये कहना चाहता हूँ भक्तों, साधु भक्त वो है जिसे दूसरा साधु भक्त साधु कहे, हम अपना ही ढिंडोरा खूब पीटते रहे, ऐसे साधु का दिल चले। लेकिन कविराज जी की रसिकता का सार देखो भक्त, जय राजे सुंदर जी की जय, कविवर सुंदर जी रचना ऐसी की है, बोले कैसी की है। श्री गौर गोविंद लीला, चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद और गौर की लीला का क्या किया, जूस बनाया, ताजे होते बदाम पिस्ता। चैतन्य महाप्रभु ने कविराज रसिक है ना, इसलिए उसने इसके पास रस है। श्री गौर गोविंद लीला, इन दोनों की लीला जब मिक्स करोगे ना तो क्या होगा, सुनीते गनये शिला, पत्थर भी निकल जाएगा, मनुष्य की क्या बात है, पत्थर जैसा दिल भी प्रेमी हो जाए अगर सुनेगा भाव से। श्री गौर गोविंद लीला सुनीते गनये शिला, फिर भी मेरा दुर्भाग्य है, नरोत्तम दास तो दयनीय में है ना, कहते कि ऐसे गोविंद और गौर की लीला का वर्णन कविराज जैसे रसिक ने किया, लेकिन हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरा चित ही नहीं लग रहा सुनने का, मन ही नहीं होता दयनीय में बोल रहा। तो इस कविराज के वक्तव्य को आप सुनने बैठे, वो क्या कह रहे, चैतन्य महाप्रभु ज्ञानी है विज्ञानी है, लेकिन विज्ञानी नहीं है ऐसा लीला रस पुष्टि के लिए स्वीकार करते हैं। लेकिन अब तत्व सुनिए, देखिए भगवान श्री कृष्ण भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति का प्रभाव क्या है, सब जानते हैं। और इसलिए गीता में कहते भक्त्या माम भी जाना थी, आप भक्ति से मैं जाना जाता हूं, पर मत भक्त भव मन मना भव मेरे भक्त बने, पर गीता के रहस्य को कौन समझेगा, भक्त जमे जो मेरा भक्त होगा वो समझेगा। और भगवान अंत में रक्षा सुरक्षा की गारंटी भी किसको दिए, नमे भक्त नमे योगी प्रणश्री नमे कर्मी बोला। तो इस गीता के वक्तव्य से कृष्ण से हम समझ सकते कि वो भक्ति की महिमा भक्ति का स्वभाव भक्ति का स्वरूप जानते। तो फिर यहां क्यों कहा जा रहा है कि वो भक्ति रस सिद्धांत जब रामानंद से सुने तो रत्नाकर हुए, मतलब उसके पहले नहीं थे, पहले नहीं थे। अब देखिए चैलेंज, पहले तो उत्तर दे दिया कि लीला रस पुष्टि के लिए स्वीकार किए पूर्ण होते हुए भी आस्वादन के लिए, लेकिन अब तत्व से कह रहे कि नहीं थे, कविराज जी का शब्द असंगत नहीं हो सकता। तो फिर समझाइए भाई कैसे नहीं है, अब पूर्ण को अपूर्ण समझाना है, वो भी तत्व से। वो कहते कि देखिए अब सुनिए, कृष्ण जो है वो भक्ति के विषय, भक्ति प्रीति के क्या है वो विषय, प्रेमास्पद है। एक शब्द होता है विषय और दूसरा होता है आश्रय, जैसे आश्रय लेने वाला उस विषय का रूप रस माधुर्य का आनंद लेता है, तो कृष्ण क्या है विषय, भक्ति के क्या है वो विषय है, पूर्ण है परब्रह्म है लेकिन विषय है, और भक्ति के विषय होने के कारण भक्ति का महिमा प्रभाव जानते हुए जानते तो है, लेकिन उस भक्त प्रेमी जो आश्रय है उस भक्त आश्रय को उस विषय प्रेम भक्ति से क्या रस क्या आनंद आस्वादन होता है उसका अनुभव कृष्ण को नहीं है। और ये अनुभव आस्वादन किसके पास है, भक्त शिरोमणि राधा के पास, और राधा जी क्या है भक्ति का आश्रय, और इसलिए राधा जी के पास वो भक्ति प्रेम आनंद आस्वादन है, कृष्ण के पास नहीं है क्योंकि विषय है,
तो उस विषय को उस आश्रय बनना पड़ेगा, इसीलिए तो गौर अवतार लिया। भक्ति बस आश्रय क्यों बने? क्योंकि ब्रज लीला में ये भाव असंभव रहा, और इसीलिए तो कविराज जी ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण को कहा, चौक्षम सस्य मदन भगवत की दृश्यों में तीनों बार राधा रानी कृष्ण की मधुरिमा का क्या रस लेती है, लूटती है, ये जानने के लिए राधा हृदय लेकर कृष्ण क्या बने? तो भक्ति रस सिद्धांत का आनंद आस्वादन आश्रय अर्थात राधा रानी के पास है, कृष्ण के पास नहीं है। कविराज झूठ क्यों बोल रहे? और ये जो भक्ति आश्रय प्रीति है ना, ये आश्रय को क्या प्रेम रस आस्वादन मिलता है, ये केवल भक्तों का अनुभव है भगवान का, और अनुभव करना है तो भगवान को भी क्या बनना पड़ेगा? और ये केवल भक्त की कृपा से हो सकता है, ये भक्ति का भक्त को अनुभव किसकी कृपा से हो सकता है? भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से भी नहीं, उनके पास है नहीं, उनका कृपा करेगा वो, भक्त की कृपा से हो सकता है। और इसीलिए आप समझिए भक्तों, कोई परंपरा में भक्त का आश्रय लिया है, और ऐसे प्रेमी भक्त के चित्त से प्रेमी भक्त रस मंडित कथा को कोई सुनता है, और ऐसी दिव्य कथा किसी के कर्ण के रस में हृदय में प्रवेश करती है, तो उस भक्त के हृदय की भक्ति भी परा अवस्था को प्राप्त होती है, अन्यथा हो नहीं सकता। प्रेमी चित्त भक्त में जो भक्त परंपरा से वो कृपा भक्ति रस पाया है, ऐसे भक्त का आश्रय लेने वाले, उसकी सेवा या उसकी कथा सुनने वाले भक्त को ही ये बस महत कृपा बिना को उत्तर में भक्ति ना है, ये सिद्धांत। अब और सर और इसको थोड़ा डाउन करते समझ समझाने के लिए, ऐसे तो डाउन हो नहीं सकता है, चांद है नीचे नहीं आ सकता, लेकिन समझाने के लिए देखिए, चैतन्य महाप्रभु आज गोदावरी के तट पर रामानंद राय के साथ संवाद करेंगे, उसमें साधन साध्य तत्व का विचार विमर्श करेंगे। तो किस कोटि का? जीव कोटि का। ये जीव के लिए साधना क्या है, साधना के द्वारा प्राप्तव्य साध्य क्या है, उसको प्रकाशित करने के लिए बैठे हैं रामानंद राय के साथ। और रामानंद राय जब स्वधर्म आचरण से लेकर अलग अलग साध्य साधन बताएंगे, तो महाप्रभु से बाह्य कह के उपेक्षा कर देंगे, या भय कह के भी असंतुष्ट रहेंगे, आगे कहो बोलेंगे, राइट? जो संवाद सुने हैं उसको पता है कि जैसे ही रामानंद राय चालू करेंगे बोलना स्वधर्म भक्ति से, तो महाप्रभु इसे बाह्य कह के उपेक्षा कर देंगे, और फिर भय है लेकिन क्या कहेंगे, आगे कहो, मतलब अभी भी इससे भी असंतुष्ट हूं। लेकिन जब प्रेमा भक्ति की बात कहेंगे और उसमें भी राधा प्रेम की बात कहेंगे जब रामानंद राय, तो इसको महाप्रभु स्वीकार करेंगे। राधा प्रेम की जब बात आएगी तब महाप्रभु कहेंगे कि बस ये जीव का पूर्ण साध्य शिरोमणि है। ओके, ये हो गया संवाद का सार। अब देखिए भक्तों, जो व्यक्ति किसी वस्तु का वास्तविक ज्ञाता हो तो अन्य इतर वस्तु को वो नहीं है नहीं बोल सकता। जैसे किसी व्यक्ति ने आम खाया है, आम मैंगो, या आम देखा है, तो फिर उसके सामने आप पपैया रखो तो बोल सकता कि ये आम नहीं है, उसके सामने आप खरबूजा रखो वो बोलेगा ये आम, क्योंकि उसने आम देखा है, उसने आम खाया है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं वो नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब राधा प्रेम क्या है वो जानते हैं, तभी तो कह रहे कि ये आप समझ रहे उदाहरण से, जिसने आम देखा है वो तरबूज को कली कर को ये आम नहीं बोल सकता। तो यहां पर रामानंद राय को ये हो नहीं ये हो बाह्य बोल रहे हैं, तो वास्तविक साध्य शिरोमणि राधा प्रेम का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु को है, और उसी को स्थापित करना है, इसीलिए यहां आए हैं, बराबर ना? इसलिए सबको मना मना कर रहे हैं, और उस बात पर उन्होंने स्वीकार किया। तो इस बात से तो फिर बात आ गई कि भाई वो तत्व तो इसको पता है, अब जो विज्ञान का खंडन किया गया था वो तो बात आ गई, इसको पता है, जब पता नहीं होता तो उसको मना क्यों रहा, अब हाँ क्यों तब तक वहां तक पहुंचे तो रुके क्यों नहीं, तब क्या क्या चक्कर है? अब सुनिए और बजेगी बात। देखिए
ये जो राधा प्रेम है ना, राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम का जो माधुरी रस है ना, वो जीव कोटि का साध्य तत्व साधन नहीं है। क्योंकि राधा रानी का जो मदनाट्य महाभाव जो है वो तो ब्रज परिकरों के अंदर भी विचित्र ही होता, साधारण जीव की तो बात ही छोड़ दो। समझ रहे हैं? राधा प्रेम सर्वसाध्य है, ओके, यहां पर रामानंद राय के संवाद का सार। लेकिन जीव कोटि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए राधा रानी जिस तरह कृष्ण की सेवा करती है, प्रेम करती है, उस तरह का मदनाट्य महाभाव जो है वो ब्रज के अन्य परिकरों में भी नहीं है, तो फिर मीरा रुदवाला के लिए क्या कहें? उसका कभी नंबर लग सकता है वहां की, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है राधा का। समझ में आती है ना बात? वो उनका भी नहीं है, तो फिर बद्ध जीव जीव कोटि का साध्यतम साधन क्या है? हम जैसे जीव का साध्य शिरोमणि क्या है कि ब्रज के जो ये परिकर है उनके आनुगत्य में सेवा करना, ये हमारा साधन और यही हमारा साध्य है। जैसे ब्रज के करीब अपने दास्य भाव में हो, चाहे वात्सल्य में हो, साक्षी या माधुर्य में, उसको किसी की भाव में जो भी परिकर हो उसके अनुगत्य में रहकर सेवा करना, ये हमारा साध्य शिरोमणि है। समझ रहे हो? आपको पता नहीं मुझे कहां भूल जा रहा है। अब सुनिए, कृष्ण का जो मधुर माधुर्य रति रस की अभिव्यक्ति चरम चरम जो है वो तो केवल राधा हृदय में या राधा आश्रित ललिता विशाखा में या उनके आश्रित मंजरियों में ही हो सकती है। कृष्ण की माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा सेवा रस रहती है उसका अनुभव या आस्वादन या साक्षात्कार या तो राधा रानी को या उसकी सेवा में ललिता विशाखा है उनकी सखी उनको, या उनकी सेवा में खासकर माधुर्य मंजरियों को है, बाकी तो किसी को है नहीं। तो फिर हम बद्ध कोटि के जीवों के लिए इन मंजरियों का आनुगत्य में सेवा करना यही जीवन का सर्वोच्च सार वस्तु है। हमारे गौड़ीय धारा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के बोल फिलोसफी पर आप विचार करो तो रूप मंजरी या सनातन की जो कमल मंजरी है भक्ति विनोद ठाकुर या कस्तूरी मंजरी कबीरा जी है, उन मंजरियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करना ये हमारा साध्य शिरोमणि राइट, ये है हमारे स्तर। तो भक्तों अब हम पहुंचे उस स्तर पर कि मंजरियों के अनुगत्य में सेवा करना यही अनर्पित चरित्रात संपत्ति है, जिसको हम कहते हैं ना अनर्पित चरित्रात करुणे अवतीर्ण कलो। क्योंकि कोई अवतार, कोई आचार्य, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई ज्ञानी, कोई धर्म प्रवक्ता आज तक दे नहीं सका, क्योंकि कैसे देगा, उनके पास भी है नहीं, ये केवल मंदिरों के पास है, ये रस केवल उसके पास है, धूप सनातन आदि मंदिरों के पास है, इसके पूर्ववर्ती होने वाले आचार्य रामानुज आदि या उसके पास भी नहीं था, कैसे दे सकते हैं? क्योंकि कोई दास्य में है तो ज्यादा से ज्यादा वात्सल्य में है, मतलब बस श्री समय दास्य नहीं रह गया इसीलिए नहीं देता। तो हमारे देखिए गौड़ी स्त्री प्रभुपाद हमें क्या वस्तु दी है, जब चैतन्य चरिता में समझते ना तब पता चलता है। तो हमारा अनर्पित चरित चिराग संपत्ति है मंजरियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा, बराबर ये लक्ष्य है हमारा। अब सुनिए कि भाई ये मंजरियों को क्या सुख मिलता है राधा रानी की और कृष्ण की सेवा करने में, ये अनुभव किसी आचार्य को नहीं है, किसी अवतार को नहीं है, किसी जीव को नहीं है, यहां तक कि राधा कृष्ण को भी नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो आप, ऐसा पूछ सकते हो? क्यों? क्योंकि ये जो सर्वोच्च मंजरी भाव में सेवा पद है इसी को प्रकाशित करना था, इसी को प्रचारित करना था और स्वयं इसका आस्वादन करना था, इसीलिए राधा भाव लेकर कृष्ण गौर बने। आप कहोगे कि राधा कृष्ण को भी नहीं है, कैसे समझाइए इसको? ऐसे तो मानेंगे नहीं, कोई भी बात तंत्र से प्रमाण से शास्त्र से होनी चाहिए। देखो कृष्ण है, आप कहते हो कि चलो वो विज्ञानी नहीं थे राधा रस, लेकिन गौरांग बैठा है सुनने के लिए, गौरांग कृष्ण अकेले नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण वो दोनों है, तो वो तो रस के सिद्धांत होने चाहिए।
पर राधा कृष्ण दोनों होते हुए भी गौरा के रस के हम बलि नहीं है कैसे?
ऐसे कि ये राधा रानी की जो सखिया है ललिता विशाखा और उनके अनुगत में जो मंजरिया है, इन सभी सखी मंजरियों का प्रधान स्थाई भाव राधा रानी की सेवा में, राधा रानी को सुख देना, यही उनकी साधना है। तो कृष्ण में भी इसका संचारी भाव है, राधा रानी की सेवा करना, उसको सुख देना, उसको आनंद देना, यही सखी मंजरियों का बिजनेस कहिए या स्वभाव कहिए। और उसके ऊपर वो कुछ जानती, वो कृष्ण को भी सेवा इसलिए करती है क्योंकि वो स्वामी जी को श्याम सुंदर सुख देते, इसलिए राधा रानी को कृष्ण सुख देते हैं, इसलिए वो कृष्ण की सेवा करती है। मूलतः स्थाई भाव वो किसकी सखी मानती है अपने आप को? राधा रानी की। तो फिर राधा रानी की सेवा करने में, उनकी आज्ञा मानने में रूप मंजरी को, कमल मंजरी सनातन गोस्वामी को, भक्तिनो ठाकुर को जो सेवा का सुख मिलता है, इसका अनुभव तो राधा रानी को भी नहीं है क्योंकि राधा रानी यहाँ विषय हो गई। उस रूप में जिनको आश्रय बनना पड़ेगा, मंजरी आश्रय है, सखी आश्रय है, राधा रानी क्या हो गई? तो विषय हो गई। तो मंजरियों को क्या सुख मिलता है इसका अनुभव तो मंजरी बनेगा या फिर मंजरी व्यक्त करेगी तभी पता चलेगा। तो राधा कृष्ण दोनों, मतलब श्यामा श्याम दोनों मिलके चैतन्य में बैठे हैं, और मंजरी कौन है, सखी कौन है? श्रीपाद रामानंद जो विशाखा सखी है। तो अपनी ही लीला शक्ति से स्थित होकर राधा कृष्ण मिली गौरांग महाप्रभु के विषय में कविराज जी कह रहे हैं कि वो विशाखा स्वरूप रामानंद राय से जब भक्ति रस सिद्धांत का उपदेश प्राप्त किया, तब उस महाभक्ति रस सिद्धांत के, मतलब सखी अनुगत्य में प्रेम सेवा रस सिद्धांत के सागर बन गए। इसके पहले नहीं, क्योंकि एक श्लोक में कितना पड़ा है आप इसको, आप मुझे नहीं पता कि एक प्रवचन से आप इसको समझ पाए, लेकिन सरल हो गया। कुछ तो सरल हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में पूर्ण है, लेकिन फिर भी लीला शक्ति से रस के लिए अपूर्णता स्वीकार करते हैं। और दूसरा बात कहते हैं कि वो विषय होने के कारण भक्त को जो आनंद मिलता है वो भगवान बने, इसलिए वो भक्त बनते हैं, और भक्त बन के राधा रानी बने तो भी वो रस अधूरा रहा क्योंकि उसकी सेवा में जो सखियों को मंजरी को वो रस तो उनको भी नहीं मिला। और वो आज वो सखी मंजरी से वो रस सुन रहे हैं, और इसलिए सुन रहे हैं कि हम सभी जीवों को देना चाहते हैं कि हमारा सार स्वरूप साध्यतम शिरोमणि वस्तु क्या है, रूप सनातन की आज्ञा में, उस मंत्री की आज्ञा में राधा कृष्ण की सेवा करना। और इसी को हमारे आचार्य ने सरल भाव में गाया, ललिता विशाखारी जग सखी नंदा, ललिता
Yeah.
तुम्हारा समझ में ना आए भक्तो, तो एक ही लाइन में इस श्लोक की व्याख्या है कि किसी परंपरा में गुरु शास्त्र निर्देश में सेवा में लगे हुए साधक वैष्णव से जब शुद्ध हरि कथा भक्ति रस सुनेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी कर लो आने वाला। बस इसको एक लाइन में, अगर इतना सारा हमने बोला इसको एक लाइन में बोला जाए कि रामानंद राय जैसे राधा कृष्ण सेवा अनुरक्त विषय वासना शून्य प्रेमी भक्त से जब हम प्रवचन सुनेंगे उनकी आज्ञा में सेवा करेंगे तभी राधा कृष्ण रस सिद्धांत समझ में आएगा, ये महाप्रभु दिखाना चाहते हैं। इसलिए पूर्ण होते हुए सर्वज्ञ होते हुए महावदान्य रस अवतार प्रेम अवतार होते हुए भी रामानंद राय से सुन रहे हैं, ये सिंपल है। और इससे भी एक सिद्धांतिक बात कही जा रही है, जय कृष्ण तत्व वेता स्वयं बोले के मालूम कि जिसके पास शास्त्रों से परंपरा से कृष्ण भक्ति का विज्ञान है उसके पास जाके सुनना चाहिए। फिर मैं धनवाना हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये सब अभिमान चलेगा। इसलिए महाप्रभु संन्यास होता है, क्या है सन्यासी भगवान है वो सब तो छोड़ दो, पर बाह्य रूप में साधारण लेवल में हम बात करें तो क्या है महाप्रभु अभी सन्यासी, और रामानंद राय क्या है सर्विस कर रहे हैं, सब छोटा मोटा कुछ नहीं लेकिन सुन रहे हैं सन्यासी बनते, मतलब सिखा रहे हैं कि जिसके पास कृष्ण प्रेम तत्व है उसके पास सुनना ये शिक्षा है। ये इन इन सारे प्रसंगों में हम यही हमें मैसेज मिलता है। और इस तरह महाप्रभु के प्रणाम करते हुए कविराज महानुभाव आगे चलते हैं, क्योंकि धन्य कलयुग है जिसमें चैतन्य अवतार हुआ और पैरों से चलते हुए पृथ्वी को पावन करते हुए गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को सब जगह पार है। और इसके साथ सांगम पंगास्त्र पारिषदम ये पंच तत्व आए, इसलिए कविराज महानुभाव अध्याय के प्रारंभ में पंच तत्व को भूलते नहीं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय भरत जय जय श्री चैतन्य
Oh,
कितने कविराज इसको गा रहे हैं, इसको अलग अलग 50 राग में हम गाएंगे, 7 दिन बिकने दो, लेकिन पहला हमने थोड़ा लंबा लिया है। ये श्लोक है कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या की, आगे बताइए इसको। सोचा कि रात हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु को आश्रय दे देना, मतलब रात में तो मंदिर में वो रुक गए। कौन से मंदिर में? तो कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि पंच तत्व की नित्यानंद प्रभु की जय हो, अग्नि आचार्य की गौर भक्त की जय हो। इसको कर दीजिए वापस। कविराज जी कहते हैं यही मधुपूर्व रीते प्रभु आते कभी गमन करेगा, जैसे दक्षिण भारत यात्रा में पूर्व प्रदेश वासुदेवीपुर का उद्धार करते हुए सबको कृष्ण कीर्तन कृष्ण प्रेमी वैष्णव बनाते हुए जा रहे थे, उसी प्रकार जाते जाते सबको वैष्णव प्रेमी भक्त कीर्तन सुनाते बनाते हुए जियड़ नरसिंह क्षेत्र कुछ दिनों के बाद किस क्षेत्र में आए चैतन्य महाप्रभु? जियड़ नरसिंह। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि विशाखापट्टनम से 5 किलोमीटर दूरी पर यह क्षेत्र है सिंहासल इसका नाम। और आज भी रामानुजाचार्य संप्रदाय के भक्त उनकी सेवा में रत है। और बड़ा ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है जिसमें 2 विग्रह है, उत्सव मूर्ति जो यात्रा निकाला जाती है और मूल मूर्ति जो प्रतिष्ठित पूर्ण स्थापित रहती है। और चैतन्य महाप्रभु ने जिस नरसिंह भगवान का दर्शन किया, आप राधा गिरधारी मंदिर में भी आओ तो आपको श्रील प्रभुपाद और उसके सामने विघ्न विनाशक से नरसिंह भगवान का स्मरण कराने वाला उनका जो रूप दिखाया गया है उस मंत्र से स्तुति किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी नरसिंह के मंदिर में जाते थे दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे और फिर क्या करते थे? स्तुति करते। प्रणाम में स्तुति मूल भी होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। प्रणाम किस तरीके से होता है? 3 तरीके। तो काया से तो आपने दंडवत कर लिया पंचांग या सस्कार, लेकिन मन से अपना सौभाग्य मान ले भगवान के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव रखते हुए, और वाचा से उनके गुणगान करना उनके स्वभाव का उनके स्वरूप का उनकी भक्त से, तब ये पूर्ण प्रणाम माना जाता है। अगर मन में आदर भाव नहीं वाचा से पूर्ण नहीं तो केवल शारीरिक कसरत हो जाएगा पूर्ण करना। और भगवान कृष्ण कहेंगे माम नमस्तु, प्रणाम करना चाहिए मानते हैं भक्तों से। आजकल संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं लेकिन कृष्ण को नमस्कार करने से क्या चमत्कार होता है ये जानते हैं। अगर कृष्ण को प्रणाम कर दिया जाए तो हमारा वेद कहता है कृष्ण प्रणामी एक बार कृष्ण को कोई प्रणाम कर दिया तो जन्म मुक्ति के चक्र में नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्तुति करते थे। और कौन सा मंत्र ये सबको याद करना? श्री नरसिंह जय नरसिंह बोलो, जय जय श्री नरसिंह प्रलादेश जयं पद्मा मुखं पद्मा। देखो इस श्लोक को समझ लीजिए, श्री नरसिंह जो सुंदर है, श्री शब्द का अर्थ सुंदर होता है, श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी जी भी होता है उसके साथ है, या फिर सबका श्री मतलब मंगल कल्याण करने वाले श्री नरसिंह उसकी क्या हो जिसकी तीनों लोगों में जय जय श्री नरसिंह का जय नरसिंह का।
जय जय श्री नृसिंह।
और जय जय से तात्पर्य है कि जो उसकी जय बोलता है उनकी भी क्या होगी,
जय।
जो भगवान की जय बोलता है उनका भी तीनों लोकों में। और इसे नरसिंहदेव करते क्या है तो कहते प्रहलादीश, प्रहलाद के ये ईश है, ईश मतलब स्वामी भरता, प्रहलाद के ये प्रहलादेश, इसको हम संदेगी देंगे ऐसा समझते हैं कि प्रहलाद को आदेश देने वाले, या फिर प्रहलाद जिसको आदेश देता है बाहर आ जाओ, नहीं, प्रहलाद ईश, प्रहलाद के भी ईश। और जयम पद्मा, और नरसिंहदेव क्या करते हैं, पद्मा मतलब लक्ष्मी जी का नाम, पद्मा मुख पद्मा भृंग, पद्मा मतलब लक्ष्मी जी, नरसिंहदेव लक्ष्मी जी रूपी मतलब कमल, पद्मा मतलब कमल भी होता है, और कमल जैसा जिनका मुख है ऐसी कमला अर्थात लक्ष्मी जी, और उनको भृंग की तरह एक भ्रमर जैसे कमल कमल में रस लेता है, ऐसे ही नरसिंहदेव अपने नेत्रों से किसको देखते हैं,
श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की।
मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस बात से लेकर, प्रभुपाद इसके तात्पर्य ने श्रीधर स्वामी का एक सुंदर श्लोक डाले, श्रीधर स्वामी बाबा देखी का में भागवत के इतने पूर्ण विद्वान हुए नरसिंह देव की कृपा से,
क्योंकि बागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य समक्षसी यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंह अहं भजे,
जिसकी वाणी में सरस्वती है और हृदय में लक्ष्मी है, ऐसे नरसिंहदेव मुझे कृपा करके ऐसा दिव्य ज्ञान दीजिए कि मैं भागवत और गीता के सार तत्व सिद्धांत को समझ सकूं, ऐसा भाव श्रीधर स्वामी ने प्रार्थना की, हमें भी करना चाहिए। और दूसरी बात, आप किसी भी रस में हो, दास्य में हो, वात्सल्य में हो, किसी भी इष्ट के आराधक हो, फिर भी आप नरसिंहदेव की उपासना कर सकते हो, इसके आपकी निष्ठा में कोई व्यवधान आएगा नहीं, उल्टा आपके रस निष्ठा का नरसिंहदेव रक्षा करेगा, ये भी समझ लीजिए। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, हाँ हम तो केवल आराध्य भगवान, मतलब ये कुछ 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 निकालना पड़ेगा ना कचरा समझना, क्योंकि पूर्ववर्ती जितने भी वैष्णव भक्ति प्रचारक आचार्य हुए हैं, चाहे फिर वो मध्वाचार्य हो, शंकराचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, सबने नरसिंहदेव की उपासना की। एक बार मध्वाचार्य गुरुवायूर में जब दर्शन कर रहे थे तो वायु हनुमान और अपना तीनों रूप दिखाए, और उसका शिष्य त्रिविक्रमा आचार्य उसको खिड़की से देख लिया, और तब मध्वाचार्य के विषय में उसने स्तोत्र बनाया त्रिविक्रमाचार्य, और उस स्तोत्र जब रखा गया गुरु के सामने अर्थात मध्वाचार्य के सामने, तब उसने देखा कि ये तू कैसे जान लिया कि मैं वस्तु तो कौन हूं, तब से तो वो भी हनुमान भाई है, तब उसने कहा कि निश्चित मेरे ऊपर नरसिंहदेव की कृपा है, और इसलिए इस स्तोत्र के आगे नरसिंहदेव के नक्श के दो स्तोत्र बनाए, इसलिए आप अब साउथ इंडिया में संस्कृत में है नरसिंह नक्श स्तोत्र, केवल नरसिंहदेव के अवतर कमरे लखन विष्णु, उसके आगे मतलब माधवाचार्य भी इसको मानते हैं। रही बात शंकराचार्य की, उसके विषय में तो वर्णन है कि एक बार उसको अद्भुत जंगल में उसको पकड़ लिया था शंकराचार्य, कितना पान दिया, और उस समय उस अघोरियों के मंत्र तंत्र से छूटने के लिए शंकराचार्य ने स्तोत्र रखा रचा, इसका नाम है लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र, श्रीमन पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे गोविंद रोग मणिरंजित पुण्य मूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाप्तिकोतम, क्या है वर्णन, लक्ष्मी नरसिंह मम देहि पदावलम्बम् संसार वृक्ष अगरीयम् अनंत कर्मा शाखा शतम् करण पत्रम् अनंत पुष्पम् आरुह्य दुःख बलाति पतितम् दयालो, लक्ष्मी नरसिंह मम देहि पदावलम्बम्। बड़ा सुंदर 19 श्लोकों में स्तोत्र किसने रचा, शंकराचार्य। और रही बात हमारे करुणा उद्यान गौरांग महाप्रभु की, वो तो यहां से स्तुति कर रहे हैं लेकिन पूरी में कविराज महानुभाव लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कि 22 पाशाचर पाछे उत्तर दक्षिण दिशे, 22 पाछड़ी है ना जगन्नाथ मंदिर, उसकी दक्षिण दिशा में उत्तर में क्या लिखा, एक नरसिंह मूर्ति आछे, देखा नरसिंह के पीछे प्रतिदिन महाप्रभु ताए करे नमस्कार, चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पर कई घंटे खड़े रहते थे, लेकिन फिर परिक्रमा करने जाते थे पीछे, तो नरसिंह देव को प्रणाम कर
प्रणाम करी बहुष्णु स्तुति करे बारंबार।
बहुत श्लोकों में क्या करते थे, स्तुति करते। तो लक्ष्मी नरसिंह का है ये, और इसके विषय में एक बड़ा सुंदर श्लोक आगे कर लिया इसको सीधा स्वामी वाला लिखा, उग्रेवाय। ऐसे बाहर से उग्र दिखते हैं लेकिन राक्षसों के प्रति उग्र है, अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह है। जैसे शेर होता है वो जंगल को शिकार करने जाता है, कब गरजता है और शिकार करता है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति कोमल होता है, करुणा नाम होता है, केशरी शोक होता है ना, ये सी नारिंद्र है वो सब अपने बच्चों के लिए तो अनुग्रह होता है, लेकिन अपक्तों के लिए, दुष्टों के लिए, हिरण्यकशिपु और उसकी सेना के लिए उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतौ सर्वतोमुखम् नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। ओं नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते यस तेजसे, आविर्भाव वज्रनख वज्रखष्ट कर्माशयान रंध्रय रंध्रय तमो ग्रसं ग्रसं स्वाहा अवयवयात्मनि पंचम स्कंद के 18वें अध्याय में प्रहलाद नरसिंह देव की स्तुति करते हुए श्लोक बोलते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने जयदेव जी का गाया हुआ वो स्तोत्र हमें विद्या मुक्ति मिलाने के लिए बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भाव से स्तुति प्रणाम किया, उसी समय पूजा जी आया, इतना प्रेम सोने जैसा चमकता विद्रा कमल जैसी आंखें, पुष्प माला लेकर चैतन्य महाप्रभु के चरण में डाल दिया। उसे कुछ तो आवाज हो गया, उसे पता पता कि जो सब अवतार लेने वाला है वो यही है। और चैतन्य महाप्रभु को माला दिया, चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव दर्शन करते हुए कीर्तन किए, प्रेम रस बरसाए, कि रात्रि हो गया, ठीक 9:30 हो गया। तो महाप्रभु ने सोचा प्रसाद लेकर शयन करना है। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि महाप्रभु श्री रात्रि करीबा से एक रात वहीं पर रुक गए। हम भी यही रुक जाते हैं, महाप्रभु को विश्राम करते हैं, ऐसे हम भक्तों को भी यही कथा समाप्त करते हैं। बस धन्यवाद आप सभी भक्तों का, और 10 करोड़ में गिर गए हैं कि सभी कम्युनिकेशन ब्रह्मचारी साधु माताएं भक्तों का जिनका इतना सुंदर भाव है कि गिरता की सेवा में लगे हैं, और हमारे सामने महामहोत्सव ब्रह्मोत्सव आ रहा है, इसकी तैयारी के लिए श्रवणी कथा उत्सव ब्रह्मोत्सव वार्षिक आज से चालू हो गया, क्योंकि इसकी जो चर्चा है वो श्री गणेश हो चुका है। आप सभी भक्त इसमें प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हम राजा श्रीदेव के सेवक हैं और शाश्वत उसकी सेवा हमने जाना है, प्रभु भाई को गुरु को प्रसन्न करना है। तो बस ये गिरधारी भक्तों का हम पर कृपा है कि बहुत सारी सेवाएं, पाठी सेवा है, पुष्पाभिषेक सेवा, महायज्ञ सेवा, जिसका वर्णन आगे आपको विस्तार से सुनाएंगे, 7 दिन का है, 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। तो आप सभी भगवान मन धन से सेवा के लिए प्रिपेयर हो जाइए, और इसकी जानकारी के लिए बाहर काउंटर होगा आपके लिए, और कल तथा से परसों से विस्तार से इसकी जानकारी भी देंगे। और विशेषकर हम द्वारका देवी प्रभु का, गरुड़ देवी प्रभु का, हर्षदेवी प्रभु, इसके सौभाग्य प्रभु और हमारे मंत्रालय प्रभु जी का सबका हम आदर करते हैं। सभी भक्तों का नाम लेने से सबका सामने बैठे हमारे विद्यालय माधव सभी भक्तों का ऋणी हूँ कि मुझे वाणी सेवा का अवसर दिया, और कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। कल 7:30 बजे फिर से कथा चालू होगी। श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री गुण गिरिगामृत की, श्री राधा महानुभाव की।